मंगलवार 8 सितंबर की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन। सरकार द्वारा सोशल मीडिया लॉ में बदलाव से जुड़े रिफॉर्म्स में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए यूजर्स को एल्गोरिथम से ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन देने का प्रस्ताव है। कम्युनिकेशंस मिनिस्टर एनिका विल्स का कहना है कि मेटा, गूगल और टिकटॉक जैसी कंपनीज अगर यूजर्स को एल्गोरिथम्स बंद करने का ऑप्शन नहीं देती हैं तो उन पर पेनल्टीज लगनी चाहिए। हालांकि ड्राफ्ट बिल में डिटेल्स की कमी को लेकर आलोचना हो रही है। सरकार का कहना है कि वो इस पर एक्सपर्ट से सलाह लेगी। अल्बनीजी सरकार के प्रपोज डिजिटल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की समीक्षा की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों समेत उन सोशल मीडिया यूजर्स को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी जिन्हें ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। अगर ड्राफ्ट बिल इस हफ्ते पार्लियामेंट में पेश होने के बाद पास हो जाता है तो ई सेफ्टी कमिश्नर को मिस इन्फॉर्मेशन समेत हार्मफुल कॉन्टेंट की पहचान करने के लिए एक व्यवस्था भी मिलेगी। लिबरल सांसद और मैनेजर ऑफ ऑपोजिशन बिजनेस डैन टेहान का कहना है कि उनकी पार्टी को इस बारे में और जानकारी चाहिए। स्टोलन जनरेशंस के सर्वाइवर्स और उनके डिसेंडेंट्स की सेहत और खुशहाली को लेकर जारी एक रिपोर्ट में पाया गया है कि उनकी उम्र के दूसरे इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस की तुलना में इस समुदाय को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में करीब आधे इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस स्टोलन जनरेशंस के वंशज थे। स्टोलन जनरेशंस स्कीम के सर्वाइवर्स में गंभीर या बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी होने की संभावना लगभग 2.7 गुना ज़्यादा थी। वहीं उनके डिसेंडेंट्स में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव की शिकायत करने की संभावना 1.3 गुना ज्यादा थी। इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के कई स्टोलन जनरेशन सर्वाइवर्स डिसेबिलिटी या लंबे समय से चली आ रही बीमारियों के साथ रह रहे हैं। उन्हें मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी और सेहत से जुड़ी दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। क्वींसलैंड की फायर सर्विस ने राज्य के दक्षिण पूर्वी इलाकों के लोगों को इस वसंत यानी स्प्रिंग के मौसम में सामान्य से ज्यादा आग लगने के खतरे को लेकर सावधान किया है। ये मौसम शुरू होने के शुरुआती कुछ दिनों में करीब 180 जगहों पर आग लगी हुई थी। इनमें से साउथ रिपली में लगी एक बुश फायर को रात भर की कोशिशों के बाद काबू में कर लिया गया। साउथ रिपली ब्रिस्बेन के पश्चिम में इप्सविच का एक सबर्ब है। कैनबरा में इजरायली एम्बेसी के बाहर प्रदर्शनकारियों ने रैली की और इसराइल से गाजा में एड वर्कर्स की मौत के लिए सार्वजनिक माफी और मुआवजे की मांग की। इनमें ऑस्ट्रेलियन एड वर्कर जूमी फ्रैंकॉम की मौत भी शामिल है। फ्रैंकॉम अपने कलीग्स के साथ गाजा पट्टी में खाना और ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए काम कर रही थीं जब अप्रैल 2024 में उनके एड कॉन्वॉय को एयर स्ट्राइक्स में निशाना बनाया गया। पिछले महीने यानी अगस्त में इजरायली सरकार ने इन मौतों की आपराधिक जाँच आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। सरकार ने कहा था कि मामले में कोई आपराधिक गड़बड़ी नहीं हुई। राजधानी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास रविवार को एक 5 मंजिला बॉयज पीजी की इमारत गिरने के हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कम से कम 6 लोगों के घायल होने की खबर है। इस मामले में 81 वर्ष के हरेराम गुप्ता, उनकी 75 साल की पत्नी उर्मिला गुप्ता और 52 साल के बेटे महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि प्रॉपर्टी उर्मिला गुप्ता के नाम पर है और उनके पति और बेटे इसे मैनेज कर रहे थे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। हादसे के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने चीफ सेक्रेटरी को राजधानी के प्रमुख पीजी हब्स में चल रहे सभी पीजी अकोमोडेशंस का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट 1 हफ्ते के भीतर कराने का निर्देश दिया है। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।